इतवार 17 जनवरी के नमस्कार भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। ईरान पर पिछले 14 सालों से लगे आर्थिक प्रतिबंध खत्म।
The United States and the EU will immediately lift nuclear-related sanctions, expanding the horizon of opportunity for the Iranian people.
चलेंगे वॉशिंगटन और ज्यादा जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया प्लान का ब्यौरा जारी किया।
स्टार्टअप्स के लिए 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात है स्टार्टअप इंडिया हब, सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल।
जानेंगे उद्योग जगत का क्या है कहना, सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे देश के लिए एक गौरवशाली जीत बताया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों के चलते दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा कम हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ सोमवार को सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। राजधानी रियाद में सऊदी सुल्तान सलमान से मुलाकात के बाद नवाज शरीफ और राहिल शरीफ मंगलवार को ईरान जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति हसन रूहानी से होनी है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक पाकिस्तान के मंत्री परवेज रशीद ने शनिवार को ये सूचना दी। इस दौरे को हाल में सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की पाकिस्तान की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले गुरुवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए हमले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं। पुलिस प्रमुख जनरल बारडोडेन हायती ने एक प्रेसवार्ता में कहा कि इनमें से एक को कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से आर्थिक मदद मिल रही थी। उनके अनुसार इसमें से कुछ लोगों की पहचान की जा चुकी है। उन्होंने कहा
bisa identifikasi 4 yang pasti itu adalah pelaku kemudian yang
हमने गिरफ्तार किए गए लोगों में से 4 की पहचान कर ली है। पिछले कुछ दिनों में हमने 12 लोगों को पश्चिमी जावा, मध्य जावा और पूर्वी कलीमंतान से गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रमुख जनरल बारडोडेन हायती के शब्द। गुरुवार को जकार्ता में कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट और गोलीबारी हुई थी, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। आईएस ने ऑनलाइन एक बयान जारी कर कहा था कि यह हमला खिलाफत के सिपाहियों ने किया है। हमले के दौरान 2 हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया था और अन्य 3 फायरिंग में मारे गए थे। हमले में कनाडाई और एक इंडोनेशियाई नागरिक की भी मौत हुई थी। पाकिस्तान में संसद की धार्मिक मामलों की समिति ने कम उम्र में शादियों के खिलाफ कानून में बदलाव को गैर इस्लामी करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है। कम उम्र में शादियों को रोकने के कानून में संशोधन का बिल सत्ताधारी पार्टी PMLN की सांसद मारवी मेमन ने रखा था। उन्होंने बीबीसी उर्दू सेवा से बातचीत में कहा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मौजूदा कानूनों पर अपनी सिफारिश देते हुए कहा है कि इस्लामी देश में शादी के लिए कम से कम उम्र तय करना ईशनिंदा के बराबर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शनिवार को स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया, जिसका मकसद उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप मूवमेंट के एक्शन प्लान की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि स्टार्टअप बिजनेस में 3 साल तक कोई निरीक्षण नहीं होगा। उन्होंने स्टार्टअप बिजनेस के लिए पेटेंट शुल्क में 80% कटौती की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के इच्छुक लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक कोष तैयार किया जाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से, नमस्कार। इतवार की सुबह ईरान के करोड़ों शहरियों के लिए एक नई सुबह होगी। मुल्क के खिलाफ पिछले तकरीबन 14 सालों से लगा आर्थिक प्रतिबंध खत्म हो गया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की बात साल 2002 में आम हो जाने के बाद अमरीका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र ने उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इन्हें समय समय पर और भी कड़ा किया गया। पश्चिमी मुल्कों का कहना था कि ईरान परमाणु हथियार तैयार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान के परमाणु संयंत्रों की जांच करना चाहता था, जिसके लिए इस्लामी देश तैयार नहीं था। ईरान ने पिछले साल विश्व के 6 बड़े देशों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उसने जो कदम उठाए उसका फल उसे आज हासिल हुआ है। ब्यौरा सुने अमल चौधरी से।
یہ فیصلہ پرمانو کارکرموں کی نگرانی رکھنے والی ایجنسی IAEA کی اس بات کی پشٹی کے بعد لیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے پرمانو کارکرموں کو دھیما کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس نے اسے پورا کیا ہے۔ IAEA کے مہانیدیشک یوکیا امانو نے کہا کہ اب ایران اور ہمارے رشتے ایک نئے دور میں پرویش کریں گے۔ انہوں نے کہا،
Today I released a report confirming that Iran has completed
آج میں نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں اس بات کی پشٹی کی گئی ہے کہ ایران نے پرمانو سندھی سے جڑی سبھی شرطوں کا پالن کیا ہے۔ یہ رپورٹ IAEA کے بورڈ آف گورنر اور سنیوکت راشٹر کی سرکشا پریشد کو سونپی گئی تھی۔ IAEA کے مہانیدیشک یوکیا امانو، ایران کے راشٹرپتی حسن روحانی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اسے دیش کے لیے ایک گورشالی جیت بتایا۔ وہیں ودیش منتری محمد ظارف نے ایک بیان جاری کر کہا،
روز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم۔
آج ہم نے وہ کر دکھایا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ جب سے ہم نے سندھی پر ہستاکشر کیے تبھی سے ہم اس پر جٹے رہے اور آپسی پرتیبدھتاؤں اور ساموہک اچھا کے بل پر یہ پرنام حاصل کیا۔ ایرانی ودیش منتری محمد ظارف۔ وہیں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران پر لگائے گئے پرتیبندھ ہٹا رہا ہے۔ امریکہ کے ودیش منتری جان کیری نے کہا،
ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ Ladies and gentlemen, Iran has undertaken significant steps.
آج ہم جہاں بھی پہنچے ہیں اس پر بہت سارے لوگوں کو شک تھا کہ کبھی ایسا ہو بھی پائے گا یا نہیں۔ ایران نے جو اپنا وعدہ کیا ہے اس کے مدنظر امریکہ اور یورپین یونین اس پر لگے سبھی آرتھک پرتیبندھ ہٹا رہا ہے۔ پچھلے سال جولائی میں امریکہ اور ہمارے متر دیشوں نے جو قدم اٹھائے تھے اس کی وجہ سے دنیا میں پرمانو ہتھیاروں کا خطرہ کم ہوا ہے۔ امریکی ودیش منتری جان کیری۔ یورپی سنگھ کی ودیش نیتی پرمکھ فیڈریکے موگرینی نے بھی کہا کہ اس سے شیتر میں شانتی اور استھرتا بڑھے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ایک بہت ہی مضبوط سندیش جائے گا کہ اگر راجنیتک اچھا شکتی اور دھڑتا ہو تو بڑی سے بڑی مشکل کا بھی سامنا کیا جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری طرف ریپبلکن ہاؤس اسپیکر پال رائن نے سمجھوتے کی نندا کرتے ہوئے اسے غلط ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایران کو بطور مدد جو $1 ارب کی راشی ملے گی اس کا استعمال وہ چرم پنتھ کو بڑھاوا دینے میں کرے گا۔ ایران پر پرتیبندھ اس سندھے میں لگائے گئے تھے کہ وہ پرمانو ہتھیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ایران نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا ہے۔
یہ تھے امل چودھری، ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں واشنگٹن سے بی بی سی سنواداتا برجیش اپادھیائے۔ برجیش، یہ بتائیں کہ ایران کے خلاف جو پرتیبندھ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ کتنا بڑا ہے؟
دیکھیں فیصل، یہ سچ مچ میں ایک ایتہاسک فیصلہ ہے وشو اتہاس کے لیے، اور راشٹرپتی اوباما کو اس کے سوتردھار کی طرح یاد کیا جائے گا اور ان کی کوٹنیتک وراثت کا حصہ بنے گا۔ یہ اس کی شروعات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیلیفون کال سے ہوئی تھی جب راشٹرپتی اوباما نے 2013 میں سنیکت راشٹر مہا سبھا کے دوران نیو یارک میں ایران کے راشٹرپتی حسن روحانی کو فون کیا اور ایک پرمانو سمجھوتے کی بات کی، اور اس کے بعد سے P5+1 یعنی امریکہ، روس، چین، برٹن اور فرانس کے ساتھ جرمنی نے ایران کے ساتھ مہینوں چلی بات چیت کے بعد پچھلے سال جولائی میں ایک ایتہاسک سمجھوتا کیا جس کے تحت ایران کو اپنی یورینیم سموردھن کھمتا کو اگلے 15 سال تک کے لیے 20% سے گھٹا کر 3.67% پر رکھنا تھا، جس کے بدلے اس پر لگے آرتھک پرتیبندھ ہٹا لیے جانے تھے۔ اور آج انتراشٹریہ پرمانو ارجا ایجنسی IAEA نے اپنی نگرانی کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ ایران نے اپنی شرطیں پوری کر دی ہیں، اور اس کے بعد کچھ گھنٹوں بعد یورپی سنگھ اور امریکی راشٹرپتی براک اوباما نے بھی پرتیبندھ ہٹانے کی منظوری دے دی۔ جہاں ایک بڑا طبقہ اسے ایک دوردرشی کوٹنیتک جیت کہتے ہیں اس کا سواگت کر رہا ہے، وہیں امریکہ میں ہی ریپبلکن پارٹی اس کا خاصا ورودھ کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اوباما نے ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اس سمجھوتے سے ایران کے پرمانو کارکرم پر کچھ سالوں کے لیے روک لگی ہے، اس پر پورن ویرام نہیں لگا ہے۔ اسرائیل جو امریکہ کا اہم ساجھے دار ہے، وہاں بھی اوباما پرشاسن کے اس فیصلے پر خاصی ناراضگی ہے۔
برجیش، یہ بتائیے کہ اب ظاہر ہے اس سے ایک دوسرا سوال میں یہ پوچھوں گا کہ ایران کو کیا حاصل ہوگا اس پورے سمجھوتے سے یا جو پرتیبندھ ہٹایا گیا ہے؟
دیکھیں، ان آرتھک پرتیبندھوں کی وجہ سے ایران کو $اربوں کا نقصان ہوا ہے، خاص طور سے تیل کے ویاپار میں۔ اب ایران انتراشٹریہ بازار میں کھل کر اپنے تیل کو بیچ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا کا چوتھا سب سے بڑا تیل کا بھنڈار ایران کے پاس ہے۔ رویٹرز ایجنسی کے انوسار پچھلے 1-2 دنوں سے ہی ایران کے مالواہک جہازوں پر بھارت اور یورپ کے لیے کچے تیل کی کھیپ تیار ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ایران کے لگ بھگ $100 ارب جنہیں ودیشی بینکوں میں ضبط کر کے رکھا گیا تھا، وہ ایران کے خزانے میں لوٹ جائیں گے۔ अब से कुछ ही देर पहले अमरीकी वित्त विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अब अमरीकी कंपनियों की जो विदेशी शाखाएं या सब्सिडियरीज हैं वो ईरान के साथ व्यापार कर सकेंगी। साथ ही ईरानी ऊर्जा कंपनियों के सामान और दूसरी सेवाएं बेचने पर जो रोक थी वो हट गई है, और इसके अलावा 300 ईरानी नागरिकों और कंपनियों पर लगे प्रतिबंध भी खत्म हो रहे हैं। एक अंदाजा है कि अगले साल तक ईरान के तेल निर्यात से होने वाली आय में 10 अरब डॉलर का इजाफा होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के दरवाजे ईरान के लिए कब तक खुलेंगे ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर IMF के एक आकलन के अनुसार ईरान के GDP में 5% तक की वृद्धि हो सकती है। और एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा फैसल, कि जो आतंकवाद से जुड़े मामलों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं ईरान पर वो फिलहाल नहीं हटे हैं, वो जारी रहेंगे।
ब्रजेश, आज दिन में ही खबर आई थी कि ईरान ने 4 अमरीकी कैदियों को रिहा किया गया, और कुछ देर के बाद खबर आई कि अमरीका 7 को रिहा कर रहा है जो ईरानी है। ये दोनों कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है, ये आर्थिक प्रतिबंध और कैदियों की रिहाई?
देखिए, 4 ईरानी मूल के अमरीकी नागरिकों को ईरान की जेल जो ईरान की जेल में बंद थे उनकी रिहाई की बातचीत एक तरह से परमाणु बातचीत के समानांतर चल रही थी, और अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के अनुसार परमाणु समझौते की कामयाबी ने इन कैदियों की रिहाई की बातचीत को गति दी है दी थी एक तरह से। और इसके अलावा ईरान ने एक और अमरीकी छात्र जिसे हाल में ही गिरफ्तार किया गया था उसे भी रिहा किया है। लेकिन इसके बदले, जैसा कि आपने कहा कि इन 4 अमरीकियों की रिहाई के बदले अमरीका ने भी 7 ईरानी नागरिकों को रिहा किया है जिन पर आरोप था कि उन्होंने ईरान पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए उसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात किए जिनसे परमाणु कार्यक्रम को मदद मिल सकती थी। तो इन 7 ईरानियों में से 6 के पास दोहरी नागरिकता थी, यानी वो अमरीका और ईरान दोनों के ही नागरिक थे, लेकिन इस पर काफी वक्त से बातचीत चल रही थी।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की नरेंद्र तनेजा से, जो अपस्ट्रीम पत्रिका, जो पेट्रोलियम क्षेत्र की बहुत ही जानी मानी पत्रिका है, उसके साउथ एशिया के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और उनसे मैंने जानना चाहा कि जो प्रतिबंध समाप्त हुए हैं उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा सीधे तौर पे।
सबसे बड़ा प्रभाव तो यही रहेगा, जो एक पॉजिटिव प्रभाव रहेगा कि हम भारी मात्रा में तेल आयात करते थे ईरान से पहले, सेंक्शन से पहले, और उसके बाद धीरे धीरे हमने काफी हद तक वो कम कर दिया क्योंकि सेंक्शन लग गई थी। अब दोबारा वो तेल जो है हम वहां से ले पाएंगे, और हमारी खासतौर से एक रिफाइनरी जो मैंगलोर रिफाइनरी है वो तो पूरी तरह कस्टमाइज की गई थी ईरानी तेल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले तेल वहां से आना शुरू होगा। और उसके साथ साथ क्या है कि भारत जो है वो ईरान से तेल और गैस पे दोनों में संबंध और मजबूत करना चाहता है, गैस भी वहां से आयात करना चाहता है, और वहां पे जो गैस का एक बड़ा प्लांट है LNG टर्मिनल है जो रुक गया था, जिसपे काम और जिसपे जर्मनी की लिंडे कंपनी काम कर रही थी, अब भारत ने पेशकश की है कि वो उस प्रोजेक्ट को भारत लेना चाहता है और 3-5 बिलियन डॉलर जो भी है उस पर वह निवेश करना चाहता है, तो अब उस पर भी काम जो है आगे बढ़ सकेगा। इसके अलावा हम भारत ने वहां पे कुएं तेल की जो भंडार है वो लिए हुए हैं, दरअसल भारत की कंपनी ONGC विदेश ने ही उसकी खोज करी थी ईरान में, अब उसके बारे में बातचीत आगे बढ़ पाएगी, एग्रीमेंट हो पाएगा। इसके अलावा जो ईरान की सरकार ने नया निवेश जो है वो उसको आमंत्रित किया है, तो भारत वहां पे आसानी से उसकी बिडिंग कर पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये तो तेल और गैस की बात रही, इसके अलावा ईरान जो अब सेंक्शन के बाद ईरान एक बहुत बड़ा भारत के लिए बाजार भी होगा, खासतौर से भारत की IT कंपनीज के लिए, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए, रिफाइनिंग कंपनीज के लिए, ऑयल एंड गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन करते हैं उसके लिए, क्योंकि ईरान का ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना है, उसको आधुनिकरण की आवश्यकता है जिसमें भारतीय कंपनी आगे आ सकती है। इसके अलावा जो वहां बंदरगाह है एक, और खासतौर से और भी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे सैंक्शन हटने के बाद ईरान भारत के लिए गेटवे अफगानिस्तान के लिए भी है और मध्य एशिया के लिए है, तो उसके तहत भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। ईरान की कंपनियों का जो भारत में पैसा पड़ा हुआ है, जो तेल उन्होंने एक्सपोर्ट किया था वो पैसा भारत वहां उनको नहीं पहुंचा पाया था सैंक्शन की वजह से, उसके अंदर भी अब तेजी से आएगी और उस पैसे का प्रयोग करते हुए दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा।
तनेजा साहब, एक सवाल बिल्कुल संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि चौथा बड़ा देश है विश्व में जिसके पास कच्चा तेल मौजूद है सबसे ज्यादा, क्या असर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर?
देखिए, जो सैंक्शन हटी है, ये पूरी सैंक्शन अभी इसमें ये मल्टीपल सैंक्शन है, एक देश की नहीं थी, कई देशों की है, तो उसको हटने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि जो एक सेंटिमेंट क्रिएट होगा कि अब ईरान का तेल भी बाजार में आ रहा है, और कुछ लोगों का कहना दावा है कि ईरान में गैस के और तेल दोनों के दुनिया के सबसे बड़े भंडार ईरान में, कुछ लोगों का ऐसा दावा है, तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा, उसका नतीजा रहेगा कि जो तेल की कीमतें अभी नीचे जा रही है, कम से कम आने वाले 6-7 महीने वो कीमतें और नीचे की तरफ जाएगी। तो शॉर्ट टर्म में ईरान को उससे नुकसान भी होगा, क्योंकि ईरान चाहता है कि तेल की कीमत कम से कम $100 प्रति बैरल हो, तभी उसको उसका फायदा हो सकता है।
ये थे नरेंद्र तनेजा, मैंने उनसे थोड़ी देर पहले बात की, ईरान पर जो प्रतिबंध समाप्त हुए हैं उसका भारत पर क्या असर होगा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख करते हैं भारत की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान पेश किया। इसका मकसद नए कारोबारियों को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप के तहत कारोबार शुरू करने वालों को 3 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होगा और इस दौरान उनकी कोई जांच भी नहीं होगी। क्या है सरकार का स्टार्टअप एक्शन प्लान, बता रहे हैं वत्सल राय।
लोगों को लगता है कि सरकार ये करेगी तो ये होगा, सरकार ये करेगी तो ये होगा। मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरी सोच है सरकार ये न करेगी तो इतना सारा होगा, और इसलिए आज आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि आप हमें बताइए हमें क्या क्या नहीं करना है।
स्टार्टअप इंडिया का एक्शन प्लान पेश करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में अपनी बात रखी। मोदी ने कहा कि लोगों के पास विचार की कमी नहीं है, मौका मिलने पर वो कमाल दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप के तहत मिलने वाली सहूलियतों का भी जिक्र किया।
स्टार्टअप्स के लिए 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात है स्टार्टअप इंडिया हब, सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप से जरिए संचालित होने वाला एक छोटा सा फॉर्म शुरू किया जाएगा। आज जो फी है पेटेंट के लिए उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर के आधार पर स्टार्टअप को छूट देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 सालों में 10,000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा, जिसमें हर साल 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 3 साल तक मुनाफे पर आयकर में छूट दी जाएगी। मोदी ने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश होगी, जिससे युवा नौकरी तलाशने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने।
स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूँ तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी के एक्शन प्लान पेश करने के पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में स्टार्टअप की चुनौतियों को सामने रखा। राहुल ने कहा कि स्टार्टअप और असहिष्णुता एक साथ नहीं चल सकते।
There is a contradiction, a huge contradiction in saying I want startups.
ये कहने में बड़ा विरोधाभास है कि मैं स्टार्टअप चाहता हूँ लेकिन मैं असहिष्णु बना रहूंगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं। स्टार्टअप के लिए विचारों का स्वतंत्र प्रवाह जरूरी है। असहनशीलता इस प्रवाह को रोकती है। अगर आप असहनशील हैं तो आप अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप में नाकाम हो जाएंगे। राहुल गांधी के शब्द। चुनौतियों की बात कारोबार जगत के दिग्गज भी करते हैं। उनकी नजर में असल चुनौती दावों को जमीन पर उतारने की होगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल राय। मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया को गेम चेंजर बता रही है, लेकिन इससे कारोबार जगत में क्या बदलाव आएगा, इसी पर हमारे सहयोगी दिनेश उप्रेती ने CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी से बात की और सबसे पहले पूछा कि उनके नज़र में स्टार्टअप की क्या खासियत है।
देखिए, एक स्टार्टअप इंडिया जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए हैं, ये तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का बात उन्होंने किए हैं, जो हमारे पॉलिसीज को सपोर्ट करेंगे, जो इंटर्न छोटे छोटे ये स्टार्टअप उद्योग जो बनाने के लिए जो एक कार्यक्रम हो सकता है उसको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे पॉलिसीज उन्होंने बोला है। उन्होंने एक अटल इनोवेशन मिशन का बात किया है, जो वाया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर उनके उनका बात किए हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 500 टिंकरिंग लैब्स, और प्रति इंक्यूबेशन ट्रेनिंग टू पोटेंशियल एंटरप्रेनर्स जो बोले हैं, अगर हम काफी सारे हम इंडिया में इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे तो आप एंटरप्रेनरशिप के बारे में सोचिए, आप एम्प्लॉयमेंट का दिशा पे देखिए, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं यहाँ पे।
मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो ये नया अभियान शुरू हुआ है इसमें मोदी सरकार के लिए चुनौतियाँ क्या है।
सबसे जो इम्पोर्टेंट बात अभी रहेंगे यहाँ पे, हम कैसे इसको सस्टेन कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टार्टअप आज चालू होंगे, फिर फेल कर जाएंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, उनको हम कैसे नर्चर कर सकते हैं, और ईज ऑफ क्लोजिंग बिजनेस एग्जिट कब, ये एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे सामने, और ईज ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस।
और स्टार्टअप के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का शुरुआती कोष रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। ऐसे में जो नए कारोबार शुरू करने के इस अभियान में क्या बदलाव आएगा?
फंडिंग सपोर्ट जो बोल रहे हैं कि थ्रू कॉर्पस ऑफ 10,000 को शुरुआत करें, ये एक स्टार्टअप इनोवेशन के लिए एक बढ़िया चीज होगा, क्योंकि इसमें से वो जो फाइनेंसिंग का हम जब बात कर रहे थे वो हमको आते नजर हुआ दिख रहा है। और एक चीज जो है, स्मॉल बिजनेस पे क्या प्रॉब्लम होता है, जो स्टार्टअप्स में क्या प्रॉब्लम होता है, हमारे जो कॉम्प्लायंस होता है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लायंस में आ जाते हैं, और वो कॉम्प्लायंस करते 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 हम ध्यान बिजनेस दिशा में नहीं रहते हैं। आज जो एक्शन प्लान अनाउंस हुआ है उसमें एक हम देख रहे हैं, एक कॉम्प्लायंस रेजिम इज बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, एंड दिस वुड एक्चुअली हेल्प जो रेगुलेटरी बर्डन जो होता है ना स्टार्टअप्स के बारे में, जो स्टार्टअप्स के ऊपर जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे।
CIA के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी, उनसे बात कर रहे थे दिनेश उप्रेती। और अब देखते हैं कि अखबार आज के क्या कह रहे हैं। अखबार में भी क्या स्टार्टअप इंडिया ही छाया हुआ है?
जी फैसल, आज के हर अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने का जो ऐलान किया था वो हर तरफ छाया हुआ है। चाहे कोई भी अखबार हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान हिंदी, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि इसमें 3 सालों तक टैक्स वसूला जाएगा, जैसा कि हमने अपनी खबरों में भी बताया है कि नई कंपनी को इसमें छूट दी जाएगी। फैसल, आपका क्या मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें छूट का ऐलान किया, तो आप क्या कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं इसके बाद, अब जो आपको भी छूट मिलेगी अगर आप शुरू करते हैं तो कोई नया बिजनेस?
ये तो बस बिजनेस तो नहीं कर सकता, बस एक ही काम आता है जर्नलिज्म का काम, तो बिजनेस तो नहीं कर सकते हम। लेकिन हाँ, कई जगहों पर जैसा हमने चंद्रजीत बैनर्जी को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि इससे जो है वो फायदा होगा, लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना था कि उसको सस्टेन कर पाना जो है वो ज्यादा अहम होगा।
जी, वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो दैनिक भास्कर में ही श्रीनगर से एक खबर है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर के एक थाने से एक कांस्टेबल 4 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया है और स्थानीय पुलिस ने उसके चरमपंथी संगठन में शामिल होने का शक जताया है। वहीं कल बुर्किना फासो की राजधानी वागाडुगू में जो चरमपंथी हमला हुआ है उसकी तस्वीर भी भास्कर ने फैसले प्रकाशित की है, जिसमें उस होटल जो हमला हुआ था उसमें आग लगी हुई दिखाई जा रही है और कैसे उसको बुझाने की कोशिश, दमकल के जो कर्मचारी हैं उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उसको दिखाया गया है।
कल तो हमने कल सुबह के कार्यक्रम में तो इसी की
जी बिल्कुल इसकी शुरुआत से की थी और इसमें 2 लोग वहां फंसे होने की भी बात हमने उसमें बताई थी अपने कार्यक्रम में। वहीं दैनिक जागरण ने एक और खबर लगाई,
भारतीयों के
जी 2 भारतीय वहां पे अभी भी उस समय फंसे हुए थे। वहीं दैनिक जागरण ने एक और खबर लगाई, इसका शीर्षक है कि सम विषम हटते ही सड़कें जाम हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि शायद जब तक हम लोगों पे कुछ लागू न हो, तब तक कोई रूल रेगुलेशन है तब तक हम लोग सही चलते हैं, और शायद उसके हटते ही
खबर सोशल मीडिया पे काफी हर जगह थी।
जी बिल्कुल, वापस उसी ढाक के 3 पात जैसे कहा जाता है वैसे ही हालत हो गई है। वहीं उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जो बयान को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने पठानकोट हमले से संबंधित एक बयान देते हुए कहा कि बतौर रक्षा मंत्री अब उनका भी धैर्य खत्म हो गया है और अब जल्द ही वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे।
दूसरी बार इस तरह से कड़ा बयान दिया।
जी बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने भारत आकर पाकिस्तानी जांच दल जो पठानकोट एयरबेस पे आके दौरा करने की जो संभावना थी उसको उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं अमर उजाला में भी एक बहुत ही उपयोगी खबर है जिसका शीर्षक है कि पौधे में मिला दिल के लिए फायदेमंद ओमेगा 3 व 6। खबर के अनुसार उत्तराखंड के सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कैप के वैज्ञानिकों ने बाजार में मौजूद कॉड लिवर ऑयल का एक विकल्प भंग जीरा नामक पौधे में तलाशने का दावा किया है। इसकी मदद से उनका कहना है कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व कैंसर जैसी जो बीमारियाँ हैं उससे जो लोग जूझ रहे हैं उनको लाभ मिल सकेगा। वहीं अगर आप जो हमारे श्रोता अगर वो इस साल कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए ये खबर थोड़ी सी उनको दुखी कर सकती है कि खबर के अनुसार जो मारुति सुजुकी की जो कारें हैं वो 12,000 रुपये तक अब महंगी होने वाली हैं। जी फैसल,
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए, और अब देखते हैं कि आज किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नज़र।
जम्मू कश्मीर में आज पीडीपी की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। महबूबा मुफ्ती इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान भाजपा के साथ मौजूदा गठबंधन और भविष्य में पार्टी की रणनीति पर विचार किया जाएगा। 7 जनवरी को मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद ये पहला मौका है जब पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी बैठक की घोषणा की है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फिलिस्तीन के दौरे पर आज रवाना होंगी और फिर वहां से 2 दिन के लिए इसराइल जाएंगी, जहां वो राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री मोशे यालोन से मुलाकात करेंगी। वहीं दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 2 दिनों के लिए ब्रिटेन रवाना होंगे और वहां से 4 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। कॉमन एडमिशन टेस्ट सीमैट 2016 की परीक्षा आज होनी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इस 3 घंटे लंबी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत जवाब पर 1 अंक काटा जाएगा। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दोवुतोग्लू आज ब्रिटेन पहुंचेंगे, जहां वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता अपने देशों के आपसी संबंध बेहतर करने पर चर्चा करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच मेलबर्न में आज खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मैच भारत हार चुका है।
कार्यक्रम खात्मे पर है, लेकिन उससे पहले सुनेंगे खेल की खबरें और उसके बाद विश्व समाचार भी, लेकिन पहले खेल की खबरें आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। टेनिस के कोर्ट पर कल 4थी वरीयता हासिल जोड़ी के रूप में खेल रहे भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग के फाइनल में हार गए। उन्हें जेबी मरे और ब्रूनो सुआरेस की जोड़ी ने 6-3, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बोपन्ना ने पिछले साल कनाडा के डेनियल नेस्टर के साथ मिलकर खिताब जीता था। पुरुष एकल वर्ग का फाइनल 3री वरीयता हासिल सर्बिया के विक्टर ट्राइकी ने जीता। फाइनल में उन्होंने 4थी वरीयता हासिल बुल्गारिया के ग्रिगोर डिमित्रोव को 2-6, 6-1, 7-6 से हराया। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज मेलबर्न में 5 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का 3रा मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही दोनों शुरुआती मैच हार चुकी है। अपनी ही जमीन पर ऑस्ट्रेलिया पिछले 17 एकदिवसीय मुकाबले लगातार जीत चुका है। भारतीय गेंदबाजी अभी तक धारहीन साबित हुई है। रही सही कसर भारत के कमजोर क्षेत्र रक्षण ने पूरी कर दी है। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसी स्थिति को लेकर कहते हैं,
बैक टू बैक 300 स्कोर करना काफी टफ है कहीं भी, बट ऑस्ट्रेलिया में हमने ऐसा किया है। बट बैट्समैन को थोड़ा और प्रेशर लेना पड़ेगा अपने ऊपर और 300 की जगह 330 या 340 का स्कोर टारगेट करना पड़ेगा।
उधर इंग्लैंड ने कल जोहानिसबर्ग में खेले गए 3रे टेस्ट मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 3रे ही दिन 7 विकेट से करारी मात दी। दूसरी पारी में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए केवल 74 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान और सलामी बल्लेबाज एलिस्टियर कुक के 43 रन की मदद से 3 विकेट खोकर कर लिया। इससे पहले स्टुअर्ट ब्रॉड की घातक गेंदबाजी के कारण दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी केवल 83 रनों पर ढेर हो गई। ब्रॉड ने केवल 17 रन देकर 6 विकेट झटके। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है।
और एक बार फिर से सुने विश्व समाचार अमल चौधरी से।
बीबीसी समाचार। ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसे देश के लिए एक गौरवशाली जीत बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ सोमवार को सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं। पिछले गुरुवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए हमले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हैं। पाकिस्तान में संसद की धार्मिक मामलों की समिति ने कम उम्र में शादियों के खिलाफ कानून में बदलाव को गैर इस्लामी करार देते हुए इसे खारिज कर दिया है। कम उम्र में शादियों को रोकने के कानून में संशोधन का बिल सत्ताधारी पार्टी PMLN की सांसद मारवी मेमन ने रखा था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में शनिवार को स्टार्टअप मूवमेंट शुरू किया, जिसका मकसद उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप मूवमेंट के एक्शन प्लान की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि स्टार्टअप बिजनेस में 3 साल तक कोई निरीक्षण नहीं होगा। उन्होंने स्टार्टअप बिजनेस के लिए पेटेंट शुल्क में 80% कटौती की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप के इच्छुक लोगों को 10,000 करोड़ रुपए का कोष तैयार किया गया है। एक ताइवानी गायिका को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान ताइवान का राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए माफी मांगने को बाध्य किया गया। बीबीसी समाचार।
इस कार्यक्रम के स्टूडियो मैनेजर थे दीपक जसरोठिया। अगली मुलाकात कार्यक्रम विश्व भारती में, तब तक के लिए फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम को दे इजाजत।